श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 6 भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय हैं, उन्हें भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं। इनसे किसी प्रकार का कलेश नहीं पहुंचता, तो फिर ऋषभ देव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? श्रील शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखे रहते हैं। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है। मनुष्य को चाहिए कि वे इससे मित्रता न करें। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यह किसी क्षण धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि शिव जी श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर उत्तेजित हो उठे और सौबरी मुनि भी योग की सिद्धावस्था से च्युत हो गए। व्याभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आसानी से आकर कभी कभी अपने पति का उनसे वध करवा देती है। यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे अवसर छूट प्रदान करता है तो उसका मन एक प्रकार से काम क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को प्रशय देता है जो निश्चय ही योगी को मार डालेंगे। काम क्रोध मद लोभ पश्चाताप मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। ये सारे मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। भला कौन बुद्धिमान मन पर विश्वास कर सकेगा? भगवान ऋषभ देव इस ब्रह्मांड के समस्त राजाओं में प्रमुख थे, किंतु अवधूत का भेष तथा उसकी भाषा स्वीकार करके वे इस प्रकार आचरण कर रहे थे मानो जड़ तथा बद्ध जीव हो। फलतः कोई उनके ईश्वरीय ऐश्वर्य को नहीं देख सका। उन्होंने योगियों को देह त्यागने की विधि सिखाने के लिए ही ऐसा आचरण किया, तो भी वे वासुदेव कृष्ण के अंश रूप बने रहे। इस दशा में रहते हुए उन्होंने इस संसार में भगवान ऋषभ देव के रूप में की गई लीलाओं को त्याग दिया। यदि कोई ऋषभ देव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस सूक्ष्म देह को त्याग सकता है तो उसे पुनः भौतिक देह नहीं धारण करनी पड़ती। वास्तव में भगवान ऋषभ देव के कोई भौतिक शरीर न था, किंतु योग माया से वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। अतः सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने वैसी मानसिकता का त्याग किया। वे संसार भर में घूमने लगे। घूमते घूमते वे दक्षिण भारत के कर्नाट प्रदेश में पहुंचे, जहां के रास्ते में कोंक वेंक तथा कुटक पड़े। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना न थी, किंतु कुटकाचल के निकट उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बिखेरे पागल की भांति घूमने लगे। जब वे भटक रहे थे तो प्रबल धावा अग्नि लग गई। यह अग्नि वायु से जगजोरे गए भांतों की रगड़ से उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि में कुटकाचल का पूरा जंगल तथा ऋषभ देव का शरीर भस्मसात हो गए। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि हे राजन, कोंक वैंक तथा कुटक के राजा ने, जिसका नाम अरहत था, ऋषभ देव के कार्यकलापों के विषय में सुना और उसने ऋषभ देव के नियमों का अनुकरण करते हुए एक नवीन धर्म पद्धति चला दी। पापमय कर्मों के इस युग कलियुग का लाभ उठाकर मोहवश राजा अरहत ने बाधा रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध एक नवीन धर्म पद्धति गढ़ ली। यही जैन धर्म का शुभारंभ था। अन्य अनेक तथा कथित धर्मों ने इस नास्तिकवाद को ग्रहण किया। अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। वे नित्य 3 बार स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। वे शौच तथा परमेश्वर को त्याग कर अटपटे नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने अथवा अपना मुख न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे और अपने केश नुचवाएंगे। डोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। इस कलिकाल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, भगवान तथा अनेक भक्तों का उपहास करेंगे। अधम लोग अपने अज्ञानवश वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। वे अपने मानसिक ढोंगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार में गिरते हैं। इस कलियुग में लोग रजो तथा तमो गुणों से भरे हुए हैं। भगवान ऋषभ देव ने इन लोगों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही अवतार लिया था। विद्वान जन भगवान ऋषभ देव के दिव्य गुणों का जाप इस प्रकार करते हैं। ओह, इस पृथ्वी लोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष हैं, जिनमें से भारत वर्ष सबसे अधिक पवित्र है। भारत वर्ष के लोग भगवान के कार्यकलापों का ऋषभ देव तथा अन्य अवतारों के रूप में गुणगान करने के अभ्यस्त हैं। ये सारे कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ हैं। ओह, भला मैं प्रिय व्रत के वंश के संबंध में क्या कहूँ, जो इतना विमल तथा अत्यंत विख्यात है। इसी वंश में परम पुरुष भगवान ने अवतार लिया और कर्म फलों से मुक्त करने वाले धार्मिक नियमों का आचरण किया। भला ऐसा कौन योगी है जो अपने मन से भी अधिक भगवान ऋषभ देव के आदर्शों का पालन कर सके। उन्होंने उन समस्त योग सिद्धियों का तिरस्कार कर दिया था जिसके लिए अन्य योगी लालायित रहते हैं। भला ऐसा कौन योगी है जो भगवान ऋषभ देव की समता कर सके। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऋषभ देव समस्त वैदिक ज्ञान मनुष्यों देवताओं गायों तथा ब्राह्मणों के स्वामी हैं। मैं पहले ही उनके विशुद्ध दिव्य कार्य कलापों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, जिनसे समस्त जीवात्माओं के पाप कर्म मिट जाएंगे। भगवान ऋषभ देव की लीलाओं का यह वर्णन समस्त मंगल वस्तुओं का आधार है। जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए इन्हें ध्यान से सुनता या कहता है, उसे निश्चय ही भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। भक्त जन भौतिक संसार के विभिन्न संकटों से मुक्त होने के लिए निरंतर भक्ति सरिता में स्नान करते रहते हैं। इससे उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है और साक्षात मुक्ति उनकी सेवा करने आती है, तो भी वे उस सेवा को स्वीकार नहीं करते, भले ही भगवान स्वयं क्यों न सेवा के लिए तत्पर हो। भक्तों के लिए मुक्ति महत्वहीन है, क्योंकि ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने पर उनकी प्रत्येक आकांक्षा पूरी हो गई होती है और वे समस्त भौतिक कामनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, परम पुरुष मुकुंद सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक हैं। वे तुम्हारे गुरु आराध्य अर्चा विग्रह मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निदेशक हैं। यही नहीं, वे कभी कभी दूत या सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं। जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है, किंतु वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत कम ही प्रदान करते हैं। भगवान ऋषभ देव को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध था, अतः वे आत्मतुष्ट थे और उन्हें किसी बाह्य तुष्टि की आकांक्षा नहीं रह गई थी। अपने में पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी सफलता की सप्रिया नहीं थी। जो वृथा ही देहात्मक बुद्धि में लगे रहते हैं और भौतिकता का परिवेश तैयार करते हैं, वे अपने वास्तविक हित को नहीं पहचानते। भगवान ऋषभ देव ने अहेतुकी कृपा वश वास्तविक आत्म बुद्धि तथा जीवन लक्ष्य की शिक्षा दी। अतः हम उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।